नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम् माया जवनिकाच्छन्नम् अज्ञातोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनामलात्मनाम् भक्तियोगविधानार्थम् कथं पश्येम हि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये।
अब आज का श्लोक दोहराएंगे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः।
श्लोक का अनुवाद इस प्रकार से है। अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र देवकी के लाडले नंद तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों के बालक लाल एवं गौओं तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद अष्टम अध्याय श्लोक क्रमांक 21।
वंदेहं श्री गुरु श्रीयुता पदकमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं सागरजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारणं नमाओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पातरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
पिछली बार हम इस श्लोक के प्रोपाद की तात्पर्य को पहले पढ़ रहे थे, आज उसी को आगे बढ़ाएंगे। एक मुद्दा ये उपस्थित हो गया था कि विशेष करके भगवान कृष्ण श्री कृष्ण के अवतार की यहाँ पर स्तुति क्यों की गई है। श्री प्रभुपाद का एक सुंदर वाक्य है यहाँ पर, पिन कुंती स्पेसिफिकली अडोर्स द इनकार्नेशन और डिसेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा अबाउ ऑल अदर इनकार्नेशंस बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर इनकार्नेशन ही इज मोर अप्रोचेबल। भगवान श्री कृष्ण को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, ये एक श्री प्रभुपाद जी का यहाँ पर वाक्य है जो आज हम इससे चर्चा आरंभ करेंगे। भगवान आसानी से प्राप्त होते हैं, इस विधान या इस वाक्य का अर्थ वास्तविक क्या है। भगवान इस जगत में बाह्य दृष्टि से किसी को भी दिखते नहीं, भगवान कहाँ हैं या दिखाओ आपका भगवान, आप किसकी पूजा करते हैं, भगवान तो अव्यक्त हैं, भगवान तो शक्ति है। एक सुंदर प्रार्थना में अभी पढ़ रहा था गजेंद्र मोक्ष उपाख्यान में, प्रभुपाद ये श्लोक है गजेंद्र का, गॉड इज नॉट अ फंक्शन, गॉड इज नॉट अ एक्टिविटी, गॉड इज नॉट अ मेल फीमेल न्यूटर और एनिमल। भगवान कोई स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, नपुंसक नहीं है, कोई पशु नहीं है, कोई भावना नहीं है, कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई प्रणाली नहीं है, तो फिर भगवान है क्या। अक्सर हम सुनते हैं गॉड इज लव, गॉड इज पावर, कि भगवान एक शक्ति है, भगवान प्रेम है, भगवान सेवा है, भगवान सद्भावना है। भागवत सबको नकारता है। ये भगवान के लक्षण हो सकते हैं, लेकिन ये भगवान है क्या? ब्रिटिशों के जमाने में एक काफी अच्छी प्रार्थना कविता किसी ने किसी रचना की थी, सिक्स मैन ऑफ हिंदुस्तान करके, कि छह अंधे लोग और ढूंढने निकलते हैं एक हाथी को, सुना है, और छह के छह लोगों को कोई ऐसा एक प्राणी हाथ में आ जाता है। एक उसकी सूंड पकड़ के कहता है कि ये प्राणी एक रस्सी जैसा है या पाइप जैसा है। एक पूंछ पकड़ के कहता है कि ये रस्सी जैसा है। एक कान पकड़ के कहता है कि जिससे धान्य को साफ करते हैं, विनो या सूप कहते हैं मराठी में, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, सूप, ये ऐसा है। कोई उसकी पीठ पर चढ़कर कहता है कि ये तो चट्टान जैसा है, दीवार जैसा है। कोई उसके छठा व्यक्ति उसके पैर को पकड़ के कहता है कि ये तो स्तंभ जैसा है। ऑल ऑफ देम आर राइट एंड ऑल ऑफ देम आर रॉन्ग, ऐसे दो लाइन से ये कविता समाप्त हो जाती है कि ये सारे के सारे इंडिविजुअल फिलोसोफर्स, अगर उनको हम फिलोसोफर समझे, तो ये सब के सब सही हैं। छह के छह लोगों ने हाथी नामक वस्तु को ही पकड़ा है। ऐसा नहीं कि वास्तविक की चट्टान पकड़ के कह रहे हैं कि ये चट्टान है, हाथी को ही पकड़ा है। लेकिन उस हाथी का एक अंश पकड़ कर कह रहे हैं कि ये ऐसा है करके, और अभी तक उनके चेहरे पर जो पट्टी है, अर्थात ये तो अंधे हैं, पट्टी लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन भौतिक अवस्था में इसी प्रकार से अनेक प्रकार के बुद्धिमान लोग, विद्वान लोग, वो सब दिव्यता या ट्रांसेंडेंस या अध्यात्म, उसके एक किसी अंश को पकड़ के कहते हैं कि ये मुझे आ गया, मेरे हाथ में आ गया। अब जैसे किसी चोर के पीछे कोई भाग रहा है और उसे चोर का पैर पकड़ लिया, बोला अरे मैंने उसको पकड़ लिया, चिल्लाएगा वो, मदद करो, आओ आओ, पकड़ लिया उसको मैंने। उसने केवल पैर का, चोर का पैर पकड़ लिया है, लेकिन वो क्या जानता है ये कहाँ भागेगा। अभी सीमित व्यक्ति, मर्यादित व्यक्ति, एक जीवात्मा, उसके किसी भी एक अंश को पकड़ो तो वो आ जाता है हाथ में। भगवान ऐसे नहीं है। भगवान के किसी एक छोटे से अंश को पकड़कर आप ये नहीं कहते कि मेरे हुट्ठे में आ गए। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं वेदेषु दुर्लभम, बोले वेद पढ़ के ये भगवान समझ में आने वाले नहीं है। अदुर्लभम आत्म भक्तो, ये क्या है फिर कि इनको दुर्लभ बताया गया है कि वेद जितना के दूध में टुबकी लगाने से घी हाथ में नहीं निकलता, उसको निकालने की एक प्रक्रिया होती है। वैसे ही भगवान को अगर जैसे दूध के मथने से घी निकलता है, वैसे इस संसार में मंथन होना चाहिए। मथुरा ये जो शब्द है ना, ये नगरी, इसका मूल शब्द है मंथन से, यहाँ पे दूध दही का मंथन होता है, मथुरा। अर्थात मधु नाम का एक असुर भी था जिसको मारा गया, तो उसके लिए मधुपुरी भी कहते हैं। दक्षिण में मदुरा, ये उसका दक्षिण भाग हो गया। तो भगवान को कैसे ये जो प्रक्रिया है कि अगर हमको पूरे पूरे भगवान हाथ में आने चाहिए, तो कुंती महारानी की प्रार्थना को देखकर प्रभुपाद जी यहाँ पर एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि कृष्णा इज वेरी इजीली अप्रोचेबल, भगवान कृष्ण के सम्मुख आप जा सकते हैं। कैसे? कुंती देवी जैसे शुद्ध भक्तों के चरणों पर, उनके चिन्ह पर रख के हम अपने चरण चिन्ह जाएंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जो चरण चिन्हों पर चलने की जो बात है, फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स, ये ऐसे है जैसे युद्ध भूमि में कभी कभी जमीन के नीचे लैंडमाइन, जानते हैं लैंडमाइन क्या होता है? एक इतना छोटा सा गोला होता है बारूद का, एक्सप्लोजिव, इसके ऊपर पैर रखेंगे तो फूट जाता है। एक आदमी मारने के लिए काफ़ी है, वो एक ही आदमी मारने के लिए उसमें उतनी शक्ति होती है। तो जब दो देशों के बीच में अगर युद्ध होता है तो कभी कभी नॉर्मल जेंटलमैन बिहेवियर ये है कि बताना कि ये एरिया लैंड माइन है, यहाँ पर केयरफुल। तो फिर वो माइन निकालने वाले औजार होते हैं, जिस व्यक्ति ने उस माइन को लगाया है जिसे मालूम है और वो उधर से चल गया है, अभी किसी के चरण चिन्ह दिखाई देते हैं उसका मतलब कोई यहाँ से जिंदा गया है, जहाँ से आगे फुटस्टेप्स नहीं है उसका मतलब उधर हो गया उसका। तो जिसके चरण चिन्ह दिखते हैं उसका मतलब उस व्यक्ति को मालूम है कि यहाँ यहाँ पर लैंड माइन्स नहीं है और यहाँ से आगे जा सकते हैं। तो चरण चिन्हों पर चलने का मतलब ऐसा है, वो देखना ध्यान से कि कहाँ है वो चरण चिन्ह हैं, फुटप्रिंट्स हैं, और बिल्कुल उसी सांचे में अपने पैर को रखना, क्योंकि थोड़ा यहाँ हो जाएगा तो ढूम फूट जाएगा। तो आचार्यों के चरण चिन्ह ये एक नौका की तरह है, ये एक सेफ शेल्टर है, आश्रय है, और कुंती देवी हमारे लिए एक आचार्य है। एक मैंने लास्ट टाइम एक जाते जाते एक ऐसा रिमार्क पास किया था कि हम इस श्लोक में अगले समय मतलब आज ये देखेंगे कि क्यों नंद यशोदा दोनों के बारे में कुंती देवी यहाँ पर उनका उल्लेख कर रही है। कृष्णाय वासुदेवाय, वसुदेव के पुत्र वासुदेव और वसती सब जगह पर जो उपस्थित हैं इसलिए भी वसुदेव, वासुदेव एक वसुदेव के पुत्र इसलिए वासुदेव, और सब जगह जो वस्ती जो व्याप्त हैं उपस्थित हैं इसलिए वासुदेव, ऑल परवेडिंग जिसे कहते हैं, बार बार पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर विशेष करके देवकी नंदनाय, वसुदेव के पुत्र देवकी को ये देने वाले, आनंद देने वाले, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो वसुदेव देवकी का नाम आता है और आगे यशोदा देवी का भी नाम आता है। गोप्या ददे त्वयि कृतागसी दाम तावत, एक कोई गोपी करके यशोदा माई का नाम आता है। तो ये नंद यशोदा और देवकी वसुदेव ये भगवान के माता पिता हैं। तो कोई कहेगा अरे आपके फिलोसॉफी में कहते हैं कि भगवान सबके ओरिजिन है, तो ये भगवान के माता पिता कहाँ से आ गए? और एक दो नहीं, अनेक सेट हैं माता पिताओं के। रामचंद्र कौन है? भगवान। उनके माता पिता कौन? तो कौशल्या और दशरथ। वामन देव कौन है? तो भगवान। उनके माता पिता कौन है? अदिति और कश्यप। कृष्ण कौन है? भगवान है, ओरिजिनल भगवान, एकदम ओरिजिनल। और उनके माता पिता कौन है? तो उनके तो दो सेट हैं, बाकी लोग का तो एक ही है, तो ठीक है कम से कम एक माता पिता है। देवकी वसुदेव ऐसे माता पिता हैं, और प्रभुपाद कहते हैं फॉस्टर पेरेंट्स। एक हमारे सीनियर डिवोटी हैं अनुवादक, उनको ये फॉस्टर पेरेंट शब्द अच्छा लगता नहीं, बोले नहीं ये फॉस्टर क्या है, इसे मराठी में दत्तक माता पिता कहते हैं, इसमें मतलब ओरिजिनल नहीं होता ना, ओरिजिनल माता पिता नहीं है, तो इसलिए इसको पाल पोस कर बड़ा करने वाले माता पिता। तो ये लास्ट टाइम हम सोच रहे थे कि इंग्लिश भाषा कैसे समय समय पर उसकी डिफिशियंसी, उसकी त्रुटियां दिखती है। परीक्षित महाराज तक ये प्रश्न एक उपस्थित करते हैं कि अपनी माता पिता को छोड़ दिया उन्होंने भगवान ने किसी। तो आचार्य हमारे यही प्रश्न उपस्थित करते हैं कि अरे वसुदेव देवकी को छोड़ दिया तो क्या नंद यशोदा उसकी माता नहीं है, माता पिता नहीं है? बल्कि सबसे अधिक बाल लीला तो नंद और यशोदा को देखने को मिली। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, ये एक सिद्धांत है, अटल सिद्धांत, अच्युत सिद्धांत। ईश्वर परम, ईश्वर का अर्थ है नियंत्रक, कोई भी नियंत्रक, हम सब नियंत्रक हैं। किसी घर में कोई पालतू कुत्ता वगैरह है तो वो उस कुत्ते का नियंत्रक है, कोई माता पिता हैं तो वो उनके बच्चों के नियंत्रक हैं, स्कूल में कोई टीचर है तो जो स्कूल के टीचर उनके नियंत्रक हैं, आप एक सर्जन हैं तो आपके सामने जो पेशेंट लेटा हुआ है आप उसके नियंत्रक हैं। बोलेंगे काटू तुम्हें, क्या करेगा वो तो बेचारा हताश आपके सामने है। डॉक्टर के लिए पेशेंट, लॉयर के लिए उसके अशील उसके क्लाइंट, एक पॉलिटिशियन के लिए उसके नीचे समस्त लोग, सारी जनता। तो ये जो नियंत्रक देखने की भावना है, इसमें एक ईश्वर भाव आ जाता है, ईश भाव। आठवें स्कंद में प्रभुपाद कहते हैं वी आर ऑल भगवान। तो हम कहते हैं अरे हमारी फिलोसफी तो ऐसे है कि हम सब भगवान नहीं है, भगवान तो एकमात्र कृष्ण है। बोले हम सब भगवान है लेकिन सुप्रीम भगवान कृष्ण है। ये मुझे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा, हम में से कोई लॉर्ड नहीं है, नो बडी इज ए लॉर्ड, नो बडी इज नियंत्रक। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, ए जायचे नचाए से ताइचे करे नृत्य। चेतन चेतन में थोड़ी नाचने की भाषा में भगवान का वर्णन करते हैं कि एकले ईश्वर कृष्ण, एकमात्र कृष्ण ईश्वर है। क्यों? आर सब भृत्य, आर्य बाकी सब उनके दास है, वो जैसे नचाते हैं सब नाचते हैं। ये लोग अगर सोचेंगे कि हम इनको नचाएंगे तो वो नहीं नाचेंगे। इसलिए तो अगर हम सब अपने आप को लॉर्ड समझते हैं तो फिर प्रभुपाद बताएंगे तो सुप्रीम लॉर्ड इज कृष्णा। अगर हम अपने आप को लॉर्ड नहीं मानते तो वो एकमात्र लॉर्ड है, अगर हम अपने को लॉर्ड मानते हैं तो वो सुप्रीम लॉर्ड है। हम भगवान नहीं है लेकिन मायावादी निर्विशेषवादी का ये धारणा होते हैं, अरे हम में भी क्या तकलीफ है, हम भी भगवान है। नॉर्थ इंडिया में जाओ तो गुरु को भगवान बोलते हैं। एक नैमिषारण्य गए थे हम यात्रा में, तो वहाँ जो आश्रम में ठहरे थे तो उधर के मैनेजर बता रहे हैं ये हमारे गुरु भगवान। तो हमने कहा ये गुरु भगवान क्या बात है, गुरु अपने आप को भगवान कहते हैं। प्रभा जी कहते हैं इसमें कोई हार्म नहीं है अपने आप को भगवान समझना। भग मतलब ऑपुलेंस, हर एक व्यक्ति के पास कुछ ज्ञान है, कुछ पैसा है, कुछ वैराग्य है, कुछ शक्ति है, कुछ प्रसिद्ध यश है, तो ठीक है। लेकिन सुप्रीम भगवान नहीं है आप, सुप्रीम भगवान ब्रह्म हम सब हैं लेकिन परम ब्रह्म कृष्ण है। तो ये खास मायावादियों को नाराज करने वाली बात हम अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे कोई व्यक्ति सोचेगा कि ये प्यून और ये डायरेक्टर, ये दोनों एम्प्लॉयज हैं, सही बात है ना, इसमें 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 गलत क्या है। कोई कहेगा इस भक्तिवंत हॉस्पिटल के वार्ड बॉय और यहाँ के डायरेक्टर, दोनों यहाँ के सेवक हैं, सही बात है। लेकिन दोनों एक ही है क्या? दोनों का स्तर एक ही है क्या? कार्य का स्तर एक नहीं है, एक निर्देशक है एक सेवक है, सेवक दोनों है लेकिन निर्देशक एक ही है, बाकी सेवक बहुत सारे हैं। ये सब भगवान तो करोड़ों करोड़ों है लेकिन परम ब्रह्म भगवान एक ही है। तो ईश्वर परम कृष्ण, उनका नाम कृष्ण है, आकर्षति कर्षति इति कृष्ण, आकर्षण सच्चित आनंद विग्रह, उनका शरीर ही सच्चिद आनंद है। और अनादिर, उनका कोई आदि नहीं, आदिर वो सबके आदि हैं। सर्व कारण कारणम, ये बहुत प्रचंड बुद्धिमत्ता की बात कही गई है ब्रह्म संहिता में। इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बताते हैं, मेरा कारण मेरे माता पिता, मेरे पिता के कारण उनके माता पिता, उनके पिता माँ कारण उनके माता पिता। प्रभुपाद कहते हैं कि जाओ ऐसे पीछे 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 पीछे, अंत में यू विल स्टॉप एट लॉर्ड ब्रह्मा, आप ब्रह्मा जी तक आगे नहीं जा सकते। ब्रह्मा जी को पूछना पड़ेगा आपके पहले कौन, कोई नहीं था यहाँ पे। नहीं लेकिन मैं जब थोड़ा विचलित हो गया था और मैं ऐसे ध्यान दे रहा था तो मेरे कान में शब्द सुनाई दिए तप तप, दो बार तप की अर्थ, तप की परिभाषा क्या है, तप करो। तप में अर्थ है कुछ कष्ट ले लो, किसी को संतुष्ट करो तो फिर सुविधा मिल जाएगी। जैसे मुझे यहां से अभी चर्चगेट जाना है, कुछ कष्ट करो पैसा देके, टिकट निकालो, ट्रेन में बैठो फिर जाओ। अर्थात ट्रेन में बैठना भी एक कष्ट है, वो बात अलग है, यहाँ ट्रेन तक जाना वो भी कष्ट है, लेकिन वो तो कलयुग के बाकी कष्ट है। लेकिन एग्जाम में पास होना है, जैसे अभी हमारे गोपाल गार्डन के बच्चों ने इतना दिदीप्यमान यश संपादित किया तो उसके लिए कष्ट किया ना, कहीं पे सेलिब्रेशन है, कहीं पे कुछ करना है, मौज मजा करना है, नहीं नहीं पढ़ाई करो, तो वो कष्ट है, उस कष्ट को अर्पण करो फिर उससे आपको कुछ मिलेगा। सिंपल चीज है, इसका अर्थ तपस्या, तपश्चर्या का अर्थ हो गया कोई एक अथॉरिटी है आपके ऊपर, अथॉरिटी को आपने किसी अधिकृत अधिकारी व्यक्ति को आपने संतुष्ट किया है। अगर यहां से चर्चगेट का टिकट है 10 रुपए और कोई मुझे कहता है कि आधे भाव में मिलेगा टिकट, तो वो मतलब कुछ गड़बड़ है नहीं, वो अथॉरिटी शायद सही नहीं होगा, या वो टिकट देगा वो ऑथोराइज नहीं होगा। तो देर आर बैड अथॉरिटीज, गलत अथॉरिटी हो सकते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी जब कह रहे हैं कि मैं किसी को देखा नहीं, कोई नहीं था वहां पर, मैंने पूछा भी मैं हूं कौन, जस्ट इमेजिन, कभी सोचिए कि आप अकेले हैं, सारे ब्रह्मा एक जगह पे नहीं, एक हॉस्पिटल पूरा खाली रहेगा और एक ही आदमी काम कर रहा है अंदर, तो उसको कितना सुना सुना लगेगा। लोग अपने घर में अकेले नहीं रह सकते, तो बाकी बात छोड़िए, ये तो उधर देख रहे हैं मैं कहाँ पे हूँ, ये दिख रहा है एक पाइप जैसा कमल की नाल थी वो, बोले मैं पूरी शक्ति लगा के ऊपर चला गया, फिर देखा कि उसका कोई एंड नहीं ऊपर, मैंने कहा शायद नीचे तो होगा, जो व्यक्ति ऊपर हो सकता है ना एंड नहीं, लेकिन नीचे कहीं तो उसका जमा होगा रूट, तो नीचे गया मैं तो नीचे भी कोई नहीं। फिर थका भागा मैं सोचा गया अभी बहुत हो गया, स्पेकुलेशन बहुत हो गया, खुद की परिश्रम बहुत हो गए, और जैसे मैंने समर्पण की भावना की, मैं अपने आप को उस कमलासन पर बैठा हुआ दिख, कमलासन भी अलग अर्थ है इसके, भगवान की नाभि कमल जैसी है, उसमें से निकलते हैं वो ब्रह्मा जी, या ब्रह्मा जी को भी कमलासन, भगवान को कमलासन कहते हैं, ब्रह्मा जी को भी कमलासन कहते हैं। और नीचे देखा तो कारण उदक, कॉजल ओशन, अच्छा नाम दिया प्रभुपाद ने, कॉज मतलब क्या, ब्रह्मांड का एक कॉज है, वो कारण है, वहां पर जो भगवान की मूर्ति है कारण उदक शाही, वहां पे जो निद्रिस्त हैं, इस जगत में लोग इतना सब करने के लिए जागृत रहते हैं, आंखें खोलकर लोगों को बोलते हैं आंखें खोल के काम करो, मैं इतना जागृत हूं, और ये सारे ब्रह्मांड की जो सृष्टि है ओरिजिन है वो भगवान तो सोए हुए हैं, उनको कोई ऐसे खास इंटरेस्ट नहीं है, उन्होंने ऐसे आंखों में तेल डालकर ये काम नहीं किया है इस सृष्टि का। तो जो इस सृष्टि को ऐसे ही बना देते हैं सोए सोए, तो भी इतनी अच्छी है, तो जो उन्होंने ध्यान देकर बनाया हो कितनी अच्छी होगी, सोचने वाली बात है। तो ब्रह्मा जी को भी समझ नहीं आया, उन्होंने तपस्या की, तपस्या से उन्होंने अपनी अथॉरिटी को संतुष्ट किया। फिर उन्हें पता चला कि मैं क्यों ये कर रहा था, क्योंकि मेरे मन में कुछ निर्माण करने की भावना थी, और वो भगवान ने अभी पूरी कर दी है कि चलो अभी ठीक से बैठ जाओ, और अभी आपके इससे सब कुछ निर्माण होगा। तो कान से कुछ निकल रहा है, नाक से कुछ निकल रहा है, भाव मुंह से निकल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा क्या निकल रहा है, वो वेद निकल रहे हैं, पशु निकल रहे हैं, पक्षी निकल रहे हैं, एक ही व्यक्ति से। क्योंकि चलो प्रभुपाल जी के ये तात्पर्य इतने महत्वपूर्ण है, प्रभुपाल जी कहते हैं कि ये ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएटर है, ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल अगर होते तो उनको पता चलता था कि क्या है सब। सडनली बीच में पीठ से कुछ असुर भी निकल गए, बोले ये कौन है, वो मारने लगे उनको, बोले ये ऐसा भी होता है। जैसे वो मारने आए तुरंत भगवान के शरण में गए, भगवान बचाइए भगवान बचाइए। ब्रह्मा जी तक को दर्शन नहीं होता है कि ये कौन अधिकारी व्यक्ति है जिसकी मैं स्तुति कर रहा हूं। यहां तक के संसार में कोई समस्या होती है तो भी ब्रह्मा जी को ध्यान से वो एक मैसेज ट्रांसमिशन होता है, डाउनलोडिंग कहते हैं ना हमको, मतलब मालूम नहीं कहाँ से आ रहा है, लेकिन धीरे 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 वो सारे नंबर हो जाते हैं, फिर वो फाइल खुल जाती है। तो वैसे ही संसार में समस्या है, असुर गण की वृद्धि हो रही है, और फिर भगवान एक मैसेज देते हैं, चिंता ना करो, माँ चिंता मस्तु, तुरंत ही भगवान अवतार लेने वाले हैं, वो केवल इस मैसेज को बाकी लोग को दे सकते हैं। तो ये रही बात वेदेशु दुर्लभम या अनादिर, उनका कोई आदि नहीं है भगवान का, वो सबके आदि है, सर्व कारण कारणम। तो फिर ये भगवान के माता पिता की ये बात क्या है, एक कम्युनिकेशन सेमिनार में आयरलैंड में, सोच लीजिए यूरोपियन देश है आयरलैंड, वहां पे भक्त लोग शरीफ, वहां पे शरीफ होते हैं, हर एक छोटे छोटे से मीरा रोड का एक शरीफ होगा, वो परमिशन देगा आपको कुछ करना है तो वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की रथ यात्रा निकालने वाले थे। तो मैंने पूछा क्या है ये प्रोग्राम आपका, बोले एक प्रोसेशन निकलेगा, किसका, बोले भगवान का, बोले भगवान तो हमारे पास है नहीं, आयरलैंड में लोग कैथलिक है सब, तो बोले भगवान का हम कोई रथ वत निकालते नहीं, और बोले ये तीन क्या है, बोले ये भगवान है, ये बाजू वाले तो बीच में उनकी बहन है, बाजू में उनका भाई है। वो ऐसे कन्फ्यूज हो गए, सोचिए जब भारतवर्ष में लोगों को धारणा नहीं है, तो ये यूरोपियन किसी छोटे से गांव के शरीफ को बताना कि ये भगवान है, भगवान के भाई है, उनकी बहन है, तो कहते हैं कि आप किस में भगवान की पूरी फैमिली है। अरे प्रभुपाद जी कहते हैं हम सब भगवान की फैमिली है, अच्युत गोत्र। एक बार कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट में आने के बाद कोई पूछेंगे आपका गोत्र क्या है, तो कहते हैं अच्युत गोत्र। बाकी गोत्र हो या ना हो बात अलग है। गोत्रम नु वर्धिताम। श्रीवास ठाकुर जब देखे कि निमाई पंडित भक्त हो गए हैं, कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण के अलावा कुछ नहीं कह रहे हैं, उनके मुख से यह आशीर्वाद निकल गया, लेट आवर फैमिली इंक्रीज, हमारा गोत्र बढ़े, यही भावना होती है। कृष्ण कॉन्शियस में ये फैमिली प्लानिंग नहीं होता, ये फैमिली जितनी बढ़े उतनी अच्छी है। नेक्टर ऑफ डिवोशन जाते हैं हम, क्योंकि इस ग्रंथ में भगवान अनादिर, सबके आदि, सर्व कारणों के कारण होने पर भी क्यों किसी को भगवान के माता पिता बताया गया है। When ecstatic love develops into the relationship of parenthood and becomes steadily established, the relationship is called Vatsalya Ras. Ecstatic love का अर्थ है भाव भक्ति। अब भाव भक्ति भी एक अच्छी अध्ययन योग्य वस्तु है। भक्ति में पहले पहले भाव नहीं होता। चलिए प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, उनकी ग्रैंड मदर, प्रभुपाद जी की दादी का विवाह हो गया था जब वो 9 साल की थी। अब सोचिए 9 साल की लड़की को क्या पता है कि ये मेरे पति हैं, तो कह रहे थे ये तो गली का लड़का था पहले, तो अभी तो सर नहीं कह रहे कि ये मेरे पति है करके, क्या हो गया सबके लोगों को। वो जो विवाह संस्कार से जाती है उसको क्या पता है कि कोई पूजा कर रहा है, चलो ये बच्चे गले में हार डालो, तो बच्चे के गले में हार भी डालती है। वो लड़का है 11 साल का, ये है 9 साल की, तो इसमें भाव तो नहीं आएगा। और अचरज की बात है कि शादी के बाद लड़की अपने घर रहती है और बच्चा अपने घर जाता है, लेकिन इसमें बहुत प्रूडेंस था एटलीस्ट उस समय। तो कुछ समय समय पर किसी त्यौहार पर वो बच्चे को कहते हैं कि जा अपनी पत्नी के घर जाओ, तो अभी वो सडनली 14 साल का हो गया है, लेकिन पत्नी के घर जाओ मतलब क्या है। तो वहाँ पर जाके देखता है तो सडनली उसको एकदम प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलती है वहाँ पर, कि अरे इसका पति आ गया। और वो बोलते कि जितना मेरे घर में मुझे भाव नहीं मिलता यहाँ पर, उससे ज़्यादा भाव यहाँ तो मिल रहा है, अच्छा लगता है। फिर उस लड़की को कहते हैं कि ये लड्डू जाके दे अपने पति को, तो वो क्या हो सबको लड्डू बांटने के लिए तैयार है, तो अपने पति के सामने जाके लड्डू रखती है बस, और खाओ इसको, वो खाता है अच्छा लगता है, वापस घर आता है। ऐसे 15वें साल में, 16वें साल में, 17वें साल में, 18वें साल में, 19वें साल में, जब तक कि हर एक कम्युनिटी का अपना अपना कोई रिवाज होता है, और एक दिन अपने आप ही प्रभुपाद सेज बाय द एक्शंस ऑफ नेचर, निसर्ग की कार्य प्रणाली से शरीर मन बुद्धि सब में विकास होता है, और अब वो लड़की लड़की नहीं, वो बाला नहीं रहती, वो अभी युवती हो गई है, और वो अभी उस व्यक्ति को देखकर लज्जा व्रीडा ये जो सब भाव है ये सब आते हैं, अब एक अटैचमेंट बढ़ जाता है। तो प्रभा जी ये उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई कहते हैं कि जप करो, ये माला लो जप करो, जैसे मुझे याद है पहली बार जब यात्रा में गए थे तब महाप्रभु सामने मिले, माला की तुमने, मैंने कहा माला की का मतलब क्या है, तो बोले मैंने कहा मेरे पास माला है ना तो करो ना फिर, तो मैंने कहा किया मतलब कितना किया, तो मैंने कहा ऐसे 10-15 मिनट तक, 16 माला करो, तो मैंने कहा सब लोग कर रहे हैं तो फिर करने लगे। तो इसलिए ये माला करना इसमें कोई भाव नहीं है ना, लेकिन प्रभुपाद जी का आश्वासन है कि ये करते रहो, बाकी सारे भी भक्तों का संग, प्रसाद ग्रहण, हरि की लीला, हरि कीर्तन, सब कुछ करने के बाद एक दिन ऐसे आएगा। जैसे सुखदेव गोस्वामी, एक बार हमारे सुखदेव गोस्वामी महाराज, भागवत कथाकार तो नहीं, सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव स्वामी, नेल्लोर और कुरुक्षेत्र प्रचार करने वाले अकेले रहते थे, 3-4-5 साल अकेले रह चुके हैं वो। और एक बार चर्चा हो रही थी, वो कह रहे हैं कि मैं रात को सोता हूँ तो ऐसे एंग्जाइटी होती है कि कब मंगल आरती हो। अरे मैंने कहा बाप रे, मैंने कहा महाराज आप तो अकेले हैं, आपको डांसिंग चैंटिंग सब अकेले करना पड़ता है। बोले हाँ, कोई कह रहा था कि उनके जो राधा राधा खान नाम के उनके विग्रह थे, वो विग्रह भी उनके ही डांसिंग के लिए ट्यून हो गए थे वो, कि जब तक ये ऐसे हरी बोल तब तक डांसिंग करेंगे तब तक उनको भी थोड़ा चैन नहीं पड़ेगा। तो ये सिंपल ऑनेस्टली बोल दिया उन्होंने, ऐसे उन्होंने कुछ ऐसे सबके सामने डिक्लेयर नहीं कर रहे थे वो, लेकिन ये एक अवस्था है। निरंजन महाराज बता रहे थे आई एम ए मंगल आरती फैनेटिक, कि अगर इलनेस की वजह से, सिकनेस की वजह से या ट्रैवलिंग की वजह से अगर मंगल आरती मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं होता तो ज़रूर दिन भर लगता है कि कुछ गया, कुछ ठीक नहीं है। ऐसा नहीं कि फिर अपशकुन होता है या ऐसा कुछ होता है, हरे के लिए कभी कभी ये भी नहीं होगा, लेकिन ये एक शुरुआत की आरंभ की, ये आरंभ के चिन्ह है। तो ये भाव इस भाव को एक कोटि या उससे भी एक कोटि भी कम पड़ता है, शतकोटि सहस्र कोटि गुना उसको बढ़ा दो उसे। रूप गोस्वामी ये चैप्टर 43 है, 43rd चैप्टर में भाव क्या है उसके ऊपर बता रहे हैं। उसके पहले उन्होंने कृष्ण भक्ति के स्वरूप, लक्षण, अपराध, उसके चिन्ह, फिर बहुत कुछ बताने के बाद फिर वो भाव इस स्थिति में आते हैं। भाव का मतलब होता है गाढ़ा कुछ, जैसे दूध है नॉर्मल डेयरी वाला 5 लीटर दूध में 5 लीटर पानी, वो नहीं, शुद्ध दूध, फिर उसको गाढ़ा किया जाए, बसुंदी या रबड़ी दूधपाक बनाया जाए तो उसे गाढ़ा कहते हैं। तो वैसे हम हरे कृष्ण वाले हैं, जब करते हैं, लेकिन जब शुद्ध मन से भक्ति की जाती है तब वो भाव होता है। फिर उस भाव में जैसे अलग अलग दूध पहले से रेडी है ठीक किया हुआ, उसमें फिर अलग अलग कुछ डालो तो उसके अलग अलग मिठाई बन जाती है, या मिठाई का अलग अलग फ्लेवर स्वाद आता है। तो वैसे एक्सटेटिक लव डेवलप्स इनटू द रिलेशनशिप ऑफ पेरेंटहुड। ये एक वत्सलता, वत्सल्य शब्द सुना है, वात्सल्य, वत्स अर्थ है गाय का बछड़ा या कोई भी पशु का बछड़ा, उसे वत्स कहते हैं, खास करके गाय के बच्चे को। और वात्सल्य वो ये भावना है जब एक गाय और बछड़े में, अभी भी देखते हैं हम, सडनली बछड़ा अगर मर गया तो गाय 3-4 दिन चिल्लाती रहती है और बछड़ा भी अपनी माँ को तुरंत पहचान लेता है। तो ये एक वात्सल्य प्रेम है, ये जब विकसित होता है, मतलब भगवान के माता पिता भगवान को जन्म देने वाले माता पिता नहीं है, भगवान के प्रति वात्सल्य भाव को जन्म देने वाले व्यक्ति हैं। क्यों मैं भगवान से मांगू हमेशा, क्या है कि मैं भगवान ये दो। प्रभु जी कहते हैं कि बिना मांगे दे रहे हैं, मांगने की आवश्यकता नहीं है कि भगवान खाना मिलेगा क्या। अरे हाथी को देखो, प्रभु जी का उदाहरण है, आगे हम पढ़ेंगे इसके टीचिंग ऑफ क्वीन कुंती के लेक्चर सीरीज में, 50,000 तक हाथी हैं अफ्रीका में, हर एक को रोज 150 किलो लगता है, कोई जाता है देखने को कि इसको मिला क्या, अरे उसको नहीं मिला शायद, ऐसा नहीं होता, सब पेट भर के खाते हैं, कोई भूखा नहीं मरता जब तक कोई मैन मेड ड्रॉट या फैमिन नहीं होता। तो उन सबको खाना देने वाले आपको क्यों नहीं देंगे, जरूर देंगे। तो जब ये भावना ऐसी होती है कि मैं कुछ भगवान को दूं, तब वो वात्सल्य इज इधर आप भगवान को पिता समझ रहे हैं या भगवान आपको अपने बेटे समझ रहे हैं, दोनों में एक वात्सल्यता इधर वे। ये जब गाढ़ी हो जाती है, स्टेडिली एस्टेब्लिश्ड, उसको वात्सल्य रस कहते हैं। तो नंद गोप कुमार आया, वसुदेव के पुत्र वासुदेव और देवक की कन्या देवकी, ये दो ऐसे महान भक्त हैं जिन्होंने भगवान कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में पाने की अभिलाषा की थी। और हमेशा देखते हैं कि ये भक्त भगवान से पूछते हैं आपके जैसा पुत्र दो, और भगवान का स्टॉक आंसर होता है मेरे जैसा कोई नहीं है। तो फिर भगवान को विवश होके बोले ठीक है मैं ही आता हूँ, तो खुद को आना पड़ता है क्योंकि वो भक्त की ऐसी इच्छा है। हर एक माँ एटलीस्ट थियोरेटिकली तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, हर एक माँ की इच्छा होती है कि अपना बच्चा हमेशा छोटा सा ही रहे, अर्थात कोई माता की चाहेगी कि जल्दी बड़ा हो ताकि बाकी समस्या ऐसे छुटकारा पा लें। लेकिन नॉर्मली जो ऐसे एकदम चबी और सुदृढ़ अच्छे हेल्थ वाले, तो माँ की इच्छा होती है कि नहीं नहीं ऐसे ही रहे। लेकिन इस जगत में पॉसिबल नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान है, जो अगर उनके भक्त चाहें कि वो ऐसे ही रहे, यशोदा माई को नित्य कृष्ण छोटे बालक के रूप में मिलते हैं, प्राप्त होते हैं, कभी वो बड़े नहीं होते। आगे यशोदा देवी का वर्णन है, ये 10वां स्कंद 9वां अध्याय श्लोक 3। सुखदेव गोस्वामी तक एक पूरे ब्रह्मचारी आजीवन क्या उनके जैसे तो ब्रह्मचारी, उनको स्त्री पुरुष भेद मालूम नहीं था। मालूम नहीं था मतलब क्या, उनको स्त्री है स्त्री है पुरुष है ये नहीं, लेकिन स्त्रियों के प्रति आकर्षण या पुरुषों के प्रति मैं भी इनके जैसा हूँ ये भावना नहीं थी। और इसका प्रूफ क्या था कि देवांगना जब एक सरोवर में स्नान कर रही थी और वहाँ से ये गए, वो विवस्त्र स्नान कर रही है, ये विवस्त्र जा रहे हैं, ना इनके मन में विकार आ गया ना इनके मन में कोई विकार आ गया। क्योंकि उसके बाद जब व्यासदेव वहाँ से जाने लगे तो वो सब देवांगनाओं ने अपने वस्त्र पहन लिए। तो उन्होंने कहा बेटियों मैं तो आपके पिता से भी बड़ा हूँ। बोले नहीं वो सब ठीक है लेकिन आप गृहस्थी हैं और आप स्त्री पुरुष के भेद को मन में विकार के रूप में जानते हैं। बोले फिर, बोले आपके पुत्र के मन में वो भावना भी नहीं। ऐसे सुखदेव गोस्वामी कितनी बारकाई से यशोदा देवी का वर्णन करते हैं। यशोदा माई का शरीर विशाल, मतलब उनकी श्रोणी विशाल और रेशम लिनन को क्या कहते हैं हम हिंदी में, लिनन को जानते हैं, सिल्क एंड लिनन, एकदम एकदम महीन कहते हैं, फाइन वस्त्र, महीन जानते हैं एकदम फाइन। और यशोदा माई के स्तन हमेशा भगवान को देखकर एकदम उससे दूध उबड़ आता था। जब वो खुद माखन का मंथन कर रही थी तब वो ओल्ड स्टाइल है, कोई मिक्सी ग्राइंडिंग में नहीं कर रहे थे सब, वो ग्राइंडर में एक अर्थात मैंने भी एक ही बार देखा है, एक ही बार किया है जीवन में, सच बोलूँ आपके सामने छूट क्या बोलना। ये जो चर्निंग बटर करके जो प्रोसेस होता है कि एक बड़े किसी पॉट में दही रखकर फिर एक रॉड से उसको मंथना, बहुत मेहनत लगती है उसमें। और दौंड में थे हम लोग और वो दूध दो था हमारा, अच्छे गाय का था, हमारा अपना था, लेकिन मालूम नहीं क्या हो गया 3-4 घंटे तक भरने के बाद थोड़ा सा एक मामूली मक्खन जैसे दिखने वाला कोई सब्सटेंस ऊपर आया था। ऐसे मक्खन नहीं कहते, हम सोच रहे ऐसे आधे घंटे तक ऐसे फस फस करके ऊपर आ जाएगा, फिर हम उसको गोपाल कृष्ण की याद करके वृंदावन का याद करके खाएंगे, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और यहाँ पर विशेष करके 10वें स्कंद में ये वात्सल्य रस में यशोदा माई का वर्णन किया जा रहा है कि खुद वो मंथन कर रही है, एक छोटा सा उन्होंने अपने लिए मथनी ली है और जोर जोर से कर रही है वो, पूरे उसके उनके केश में उन्होंने मालती मल्लिका और ऐसे सुंदर सुगंधी पुष्प लगाए हैं, उनके हार भी है पुष्प लगाए भी हैं। जैसे ही वो मथ रही है हाथ के कंगन किच 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 करके आवाज़ कर रहे हैं, कानों के कुंडल वो भी तालबद्ध नृत्य कर रहे हैं। तो उसमें कहते हैं कि भगवान कृष्ण के लिए जब कुछ करते होते हैं, ये मक्खन किसके लिए है तो कृष्ण के लिए, मतलब ये कृष्ण की पूजा है, कृष्ण की पूजा मतलब वहाँ पे चैंटिंग और डांसिंग होना ही चाहिए, कुछ कीर्तन हो रहा है और कुछ नृत्य हो रहा है। तो यशोदा माई उस समय अब हाथ काम कर रहे हैं मथने का, कान के कुंडल हिल रहे हैं, वो नृत्य कर रहे हैं और मुख से वो भगवान के आज तक के जो भी कुछ उन्होंने कार्यकलाप किए हैं उनके ऊपर सुंदर सुंदर भजन गा रही है। और ये सब प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक्सटेंसिव लेबर, ये इतना परिश्रम से घर्म बिंदु पसीना आ रहा है, गोलोक वृंदावन में पसीना नहीं आता, वो पसीना जैसे आप डॉक्टर लोग हैं आपको मालूम है वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है शरीर का, है कि नहीं, वो कोई सुगंध नहीं होता, नहीं तो इतना पूरा जो बॉडी ओडर इंडस्ट्री हो तो बंद पड़ गई थी, बीओ करके तो बड़ा सिंड्रोम है।
लेकिन वहां पर गोलोक में वो पसीना भी सुगंधी होता है, मतलब केवल नाम के लिए कोई चीज लगती है ऐसे कि वो अरे वहां का पसीना, अरे वहां का परिश्रम लिया है, परिश्रम नहीं है। नंद बाबा की का वर्णन भागवत में ऐसे आता है, द हेयर्स ऑन हिज हेड आर जनरली ब्लैक बट सम ऑफ देम आर ग्रे, ऐसे काले काले बालों के हैं नंद बाबा, लेकिन बीच बीच में थोड़े सा मिडिल एज की बात हो रही है। हिज गारमेंट्स आर ग्रीनिश कलर, ऐसे नहीं कि खाली ग्रीन ही है, लेकिन एक उस समय का स्नैपशॉट। आप सोच लिए जो भी वर्णन कोई व्यक्ति भागवत में या पुराणों में करते हैं वो जैसे कुछ हो रहा है, जैसे नरीमन पॉइंट के ट्रैफिक का शॉट स्नैपशॉट लिया किसी ने, तो ये नहीं कि हर रोज 10 बजे वही गाड़ी खड़ी होती है वहां पर, ट्रैफिक चल रहा है उसका एक फोटो लिया। वैसे ये आचार्य अपने मन में, शुद्ध मन में जब कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो जो भी कृष्ण की लीला उनके सामने आती है उसका वर्णन करते हैं वो, कि यशोदा माई लाल साड़ी पहनी हुई है, यही नहीं कि मतलब एक ही लाल साड़ी है। आप कहोगे अरे मेरे पास तो 15-20 है, और उधर गोलोक में जाके एक ही कली ना, ये उस समय मिला हुआ उनको वर्णन है, डायरेक्ट रिले है ये, डायरेक्ट ट्रांसमिशन। और इसलिए कभी कभी अलग अलग आचार्य जिनको अलग अलग साक्षात्कार होता है वो कहते हैं कि भगवान रामचंद्र ऐसे दिखते हैं, कोई कहते ऐसे दिखते हैं। कालिया में कभी कभी, कालिया कृष्ण लीला में, कालिया दमन लीला में कभी कभी कालिया के ऊपर भगवान नाचते हैं, कभी कभी उसको एक वाहक बनाकर उधर से मथुरा तक चले भी जाते हैं, अलग अलग समय थोड़ा सा चेंज करते हैं भगवान भी। नंद बाबा के वस्त्र हरे रंग के हैं, लाइक द न्यू ग्रोन लीव्स ऑफ ए बनियन ट्री, वट वृक्ष के नव पल्लव के जैसे उनके वस्त्र होते हैं। हिज बेली इज फैटी, थोड़ा सा पेट आगे बढ़ा है, लेकिन कोई ओबेसिटी का प्रॉब्लम नहीं समझना। वैश्य होते हैं वो थोड़े से पेटू होने ही चाहिए, जैसे ब्राह्मण तपस्वी है तो एकदम सुदाम जैसे दिखेंगे, और अगर खाते पीते हैं अच्छे ब्राह्मण, ब्राह्मणा मधुरा प्रिया, तो थोड़े से पेटू होंगे वो। क्षत्रिय वो कभी पेटू नहीं हो सकता, इसका मतलब ये काम नहीं कर रहा है, खाली बैठा है खा रहा है। सन्यासी, भक्ति सिद्धांत सूरी ठाकुर देखते थे अगर कोई सन्यासी और थोड़ा सा अगर साइज बढ़ रहा है तो बोलते हैं क्या हो रहा है, सन्यासी बना है आपको मैंने और विलासी बन रहे हैं आप, ऐसा एक छोटा सा रिमार्क भी आता था तो वो तुरंत फास्टिंग चालू करते थे वो सन्यासी, मतलब पूरा दिन का फास्टिंग नहीं लेकिन कम से कम 3 टाइम में से 2 टाइम फास्टिंग है ऐसा कुछ। प्रभुपाद जी कहते कि फिर उनको गुरु महाराज से फिर एक बार नहीं नहीं अभी ठीक है, अभी ये साइज ठीक है, ऐसे होता है अक्सर मालूम नहीं क्यों। लेकिन इसको भी देखा है कि संन्यास लेने के बाद थोड़ा सा आदमी का शायद लोग घर पे बुलाते होंगे, महाराज प्लीज एक पराठा और एक लड्डू और फिर वो हरेक के घर में जाकर हरेक को संतुष्ट करना, फिर क्वेश्चन आंसर करना, तो थोड़ा हो जाता है वो, लेकिन नॉर्मली नहीं होना चाहिए। और शूद्र को भी, शूद्र के बारे में साइज के बारे में पता नहीं किया, लेकिन वैश्य नेसेसरीली, क्योंकि वो सारा प्रोडक्शन उसके हाथ में है ना, ग्रेन्स फूड ग्रेन्स दूध वूध सब उसके हाथ में है, इसलिए थोड़े से फैटी। हिज कॉम्प्लेशन इज एग्जैक्टली लाइक द फुल मून, चंद्र की तरह उनकी अंग कांति। ही हैज ए ब्यूटीफुल मस्टाच, और एक मूछ भी है उनको, एक बार एक हिप्पी लोगों को बहुत दाढ़ी मूछ बढ़ाने की इच्छा थी और धारणा भी थी, तो एक भक्त ने प्रभुपाद जी के पास जाके एक फोटो दिखाया, बोले देखो आदित्य आचार्य की बहुत बड़ी दाढ़ी है देखो, और अर्जुन की भी मूछ है। प्रभुपाद ने कहा हो सकती है वो क्षत्रिय है, आदित्य आचार्य महाविष्णु है, आप उसमें से कोई हो क्या? अरे यहाँ मेरी संस्था में मुझे सब क्लीन चाहिए। प्रभुपाद का क्लीनलीनेस पे ज़्यादा जोर था, कई लोग खास करके इंडिया में समझते हैं कि मूछ रखना मतलब मर्दानापन, तो बने गए क्या कलयुग के लोग हैं अपने आप को मर्द समझते हैं, हाफ अलाइव, खाना पीना तो ऐसा है तो मर्द की क्या बात है इसमें। तो वैरागी लोग विराग, नो अटैचमेंट, राग का मतलब है अटैचमेंट, मुझे अपना चेहरा सुंदर दिखना चाहिए इसके प्रति अटैचमेंट नहीं होती, इसलिए दाढ़ी मूछ दोनों को बढ़ाते हैं कैसा भी दिखे विद्रूप। प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रचार के लिए हम उसी अटैचमेंट को
पूरा क्लीन रख के करते हैं। सॉरी आज मेरा ही क्लीन नहीं है लेकिन भावना ये है कि ये विराग दिखना चाहिए उसमें। जब कृष्ण, एक छोटा सा उदाहरण दिया है उसमें, जब कृष्ण छोटे थे तो वो अपने आंगन में नंद बाबा का हाथ पकड़ कर, उनकी उंगली पकड़ कर चल रहे थे। पर छोटा सा बच्चा है, 7-8 महीने का 10 महीने का, इसको ठीक से चलना भी नहीं आता। 10 महीने तक चलता है बालक, कि 1 साल तक चलता है, 1 साल तक। तो बीच में अचानक श्री कृष्ण ऐसे छोटे से अनइवन ग्राउंड है तो गिर गए। इतना भी देखकर अचानक नंद बाबा के आंखों में आंसू की धारा बहने लगी कि कितना भाग्यशाली हूँ मैं कि ऐसा मुझे पुत्र प्राप्त हो गया है। कभी ये भगवान अपने पिता का, उनकी खड़ाओ, उनके सैंडल शूज, वो जब माता पिता के जाओ अपने बाबा बाहर जा रहे हैं उनके लिए वो जूते दे दो, तो ये भक्त, एक भक्त दिखाता है कि मुझे भगवान से इतना प्रेम है कि मैं उनसे कुछ नहीं मांगता, ये मेरी तरफ का वात्सल्य है। और भगवान उसका क्या आदान प्रदान करते हैं, उसका रेसिप्रोकेशन। वो बालक श्री कृष्ण, अभी बालक मतलब ये नहीं कि अगर चाहो तो मैं सारे श्लोक बोल सकता हूँ, सारे वेद बोल सकता हूँ, वो बालक की तरह व्यवहार करते हैं। कृष्ण ने उस खड़ाव को उठाकर अपने सर पे रख दिया और सर पे लेकर वो अपने पिता को, नहीं ये इसे पहनो। वो कहते कि नहीं 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 बेटा, ये ऐसे सर पे नहीं रखते। तो जैसे कोई छोटा सा बालक, नन्ना बालक, जानता नहीं क्या कैसे करना है, बिल्कुल ऐसा ही व्यवहार श्री कृष्ण अपने माता पिता के साथ कहते हैं, करते हैं। तो इसीलिए ये जो वात्सल्य रस है ये एक बहुत ही मीठा, बहुत ही सुंदर ऐसी एक भावना है। वास्तविक भगवान का कोई माता पिता नहीं है, क्योंकि इस व्यक्ति ने यह धारणा की है कि मुझे कुछ देना है, तो ये रिलेशनशिप बन जाता है। जैसे प्रभा कहते, रिलेशनशिप इज एस्टैब्लिश्ड। हम अपने आप को ईश्वर मानने के लिए यहां पर आए हैं भौतिक जगत में, इसलिए वास्तविक जो ईश्वर है वो हमसे बोझिल हो गए हैं, इज हेजी, इज नॉट क्लियरली विजिबल। शुद्ध भक्ति में जिनको भगवान की सेवा करने की इच्छा है माता पिता के रूप में, इसलिए भगवान उनसे बोझिल हो गए हैं। मतलब दोनों तरफ से, दोनों प्रांतों में, भौतिक जगत और अध्यात्म जगत, कुलोक वृंदावन में खास करके, वैकुंठ लोक में नहीं, वहाँ पे पक्का होता है कि विष्णु है, ये भगवान है, हम छोटे दास हैं, ये परमेश्वर हैं। गोलोक वृंदावन में लेकिन अगर किसी को पूछेंगे, नंद बाबा को पूछेंगे कृष्ण भगवान है, तो बोलेंगे भगवान कितना झूठ बोलता है देखो, कितना उधम मचाता है, चोरी करता है, अरे ये कोई भगवान की रीत है। वो 100% कन्विंस्ड है कि ये भगवान नहीं है, भगवान जो नारायण है उनकी कृपा से ये बचता आ रहा है। हम कहेंगे नहीं नहीं, अगर हम मिलेंगे कभी नंद बाबा यशोदा माई को, वास्तविक आपका लड़का ना भगवान है, उन्होंने कहा ठीक है। इतना थिक कर्टन है वो योग माया का, वो लेयर जो है शुद्ध प्रेम का, वो लेयर इतना जाड़ा है कि ये लॉजिक का छोटा सा लकड़ी का तीर उसको भेद नहीं सकता। जैसे कि यहाँ पर भगवान बनने की अज्ञान का जो लेयर इतना थिक है कि इतना पढ़ने पर भी कभी कभी भेजे में नहीं घुसता, क्योंकि ये अज्ञान का लेयर है, स्तर एक थर, वहां पर शुद्ध प्रेम का एक लेयर पड़ा रहता है जिसके सामने लॉजिक, रीजनिंग या ये वेद वाक्य भी ये सब फीके पड़ जाते हैं। कभी कभार ऐसे होता भी है कि यशोदा माई देखती है अपने मुख, बच्चे के मुख में, वो गोलोक में नहीं, यहाँ पर इस भौतिक जगत के गोकुल वृंदावन में, भगवान कृष्ण ने एक दिन ऐसे जमाई ले ली, हमें सब बच्चे लेते हैं और सारी माँ देखती है बच्चे के मुख में क्या देता है उनको, एक दो दांत आए हुए हैं या नहीं है या एक जीवा है, और तो कुछ दिखता नहीं ना। यशोदा माई को सारा ब्रह्मांड, सारे तत्व, सारी भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सब कुछ दिखाई दिया उसमें। उसमें उसको खुद का दर्शन हो गया कि वो अपने बच्चे के मुख में देख रही है, ये कैसे। तो अचानक उसको लगा कि क्या मैं माया में हूं, कि मैं ब्रज की रानी हूं, नंद जी मेरे पति पति हैं, ये मेरा बालक है, ये तो परमेश्वर है। कुछ सेकंड के लिए भगवान ने अपनी योग माया को, जैसे एक चंद्रमा को एक बादल ने ऐसा ढक लिया था तो अचानक धरती पे कुछ दिखाई नहीं दिया, वो बादल चला गया, हाँ अचानक स्पष्ट दिखाई दिया।
तो योग माया का पटल थोड़ा सा भगवान ने दूर किया तो यशोदमाई देखी, कहने लगी हरी पगली मैं अपने को क्या सोच रही हूँ, ये तो मेरा बालक है, देखो कितना छोटा सा है, इसको कितना रक्षण करना आवश्यक है मेरे लिए। तो वात्सल्य रस इस प्रकार से, और कुंती देवी भी वात्सल्य रस की ही भक्त है। आगे की श्लोक में आएगा कि कैसे वो, अर्थात इतना थिक नहीं है, हमको बोलने का अधिकार नहीं है कि ये अच्छा है ये बुरा है करके, लेकिन आचार्य बताते हैं जो दिल्ली इंद्रप्रस्थ जैसे शहर में रहकर वृंदावन की ओर दृष्टि रखते हैं उनका रिलेशनशिप थोड़ा सा थिनर है, थोड़ा सा अलग प्रकार का है, लेकिन जो गोलोक वृंदावन गोकुल में रहते हैं नंद यशोदा, उनका जो वात्सल्य है वो वात्सल्य की चरम लास्ट लिमिट है। थोड़ा लेट हो गया सॉरी। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की। आगे श्लोक में जो मुद्दे आएंगे विशेष करके भगवान कैसे हमारा पालन पोषण करते हैं वो हम आगे देखेंगे। हरे कृष्ण। वी हैव टाइम फॉर ए क्वेश्चन, किसका कोई प्रश्न है या कोई कमेंट्स? धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की।